खैर साहब, वी आर लाइव अगैन। देखें, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कोई इंडिया पाकिस्तान की कोई सीरीज वीरीज की कोई ऑफर मारी है, उसके ऊपर मैं कहता हूँ जरा शो के दरमियान में डिस्कशन करते हैं जब थोड़े ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। लेकिन अभी जो मैं आपसे मुद्दा आज का छेड़ना चाहता हूँ वो ये है कि हमने बैटिंग की तो बहुत बात कर ली, बाबर की कप्तानी की भी बात कर दी कि भाई हमारी बैटिंग लाइनअप में काफी जो सबसे बड़ा मसला लग रहा है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी लग रहा है। मतलब मैंने और आपने अपनी प्लेइंग 11 भी बनाई पिछले एपिसोड में, उसमें हमारे बंदों पर तो इख्तलाफ था, प्लेयर्स पर थोड़ा सा इख्तलाफ था, लेकिन कंसेंसस ये था भाई कि हमारी बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए मैच सिचुएशन के हिसाब से। तो अब मैं ये मुद्दा बॉलिंग पर भी छेड़ना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है हमारी बॉलिंग में सब ठीक है? क्या आपको लगता है बॉलिंग में भी इनफ्लेक्सिबिलिटी का कोई इशू चल रहा है? क्या कहते हैं आप?
यार ये बड़ा अच्छा मुद्दा है आपका आज का। मेरे ख्याल में यू होता है ना पाकिस्तान में कि जब एक टीम जीत जाती है तो फिर वो वाले टाइम पे हम लोग वीकनेसेस की बात नहीं करते, और खास तौर पे ऐसा मैच जहां पे पाकिस्तान बॉलिंग की वजह से जीता हो तो वहां पे तो बिल्कुल वीकनेसेस तो आपकी गायब हो जाती है, लोग फिर वीकनेसेस को डिस्कस ही नहीं करते। तो बड़ा अच्छा मुद्दा है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। मेरे ख्याल में अच्छी बॉलिंग है पाकिस्तान की, बहुत अच्छी बॉलिंग है, लेकिन अभी भी थोड़ा पोटेंशियल है, इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है।
बिल्कुल, नहीं ज़बरदस्त बात की आपने। तो इसी पॉइंट को आगे एक्सपैंड करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि हमारी बॉलिंग लाइनअप में बैटिंग लाइनअप की तरह इनफ्लेक्सिबिलिटी है कि जहाँ पर आपको राइट बैटिंग में बैटर भेजना चाहिए उस सिचुएशन के हिसाब से, यहाँ पे हम बॉलर में भी वही मिस्टेक कर रहे हैं कि राइट मैच सिचुएशन में राइट बॉलर या राइट प्लेयर के अगेंस्ट, बैटर के अगेंस्ट राइट बॉलर नहीं भेज पा रहे? क्या कहते हो आप?
यार बिल्कुल बिल्कुल, ये इशू जेन्युइन है, और ये इशू अगर आपको याद हो हम लोगों ने पहले भी बात की थी ऑफ द स्क्रीन थोड़ी सी कि यार पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट जा रही है। मिसाल के तौर पे जो पहले छह बंदे के मिसाल के तौर पर जो शुरू के छह ओवर्स है उस पर हम लोग काफी कॉन्स्टेंट चीजें देख रहे हैं। लास्ट जो डेथ ओवर्स है वहां भी हम लोग कॉन्स्टेंट चीजें देख रहे हैं जहां पे रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है वहां पे जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जो स्टार्ट के छह ओवर्स है वहां पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत है।
बिल्कुल यार, देखो अब मैं आपको अगर सवाल ये पूछूं कि हमने देखा लास्ट कुछ सीरीज में और कुछ मैचेस में, खासतौर पर एशिया कप की अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें हमने देखा कि भाई बाबर आजम बहुत कम यूटिलाइज करता है अपनी सिक्स्थ सेवन्थ बॉलिंग ऑप्शंस को। जैसा खुशदिल की बात की हमने, ये इफ्तिखार की बात की, वो बहुत कम यूटिलाइज करता है। फिर हमने ये भी देखा है कि जैसा आपको एशिया कप का फाइनल याद होगा राजा पक्सा के अगेंस्ट हमने नवाज को बॉलिंग नहीं करवाई कि जी ये लेफ्ट हैंडेड बैटर है तो ये छक्के मार देगा नवाज को। हालांकि अगर आप स्टैट्स निकाल के देखो तो राजा पक्सा शायद लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, वैसे तो वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं लेकिन स्पिनर्स में से सबसे कम अच्छा वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को खेलते हैं, तो हमने उधर नवाज को सिर्फ एक ओवर दिया। तो क्या हमारी आपको ये डाटा एनालिटिक्स वाली टीम, क्योंकि आप खुद एक डाटा साइंटिस्ट हैं, क्या आपको लगता है कि ये डाटा एनालिसिस में काफी मसला चल रहा है?
यार बिल्कुल सही कह रहे हैं, इशू चल रहा है। जिस तरह आपने मेंशन किया, मैं खुद डाटा साइंटिस्ट हूं, तो ये वीडियो से पहले मैं काफी ज्यादा डेटा देख रहा था, ये क्रिक इन्फो पे, क्रिक बस पे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, तो मुझे आइडिया हो रहा था कि यार अगर हम एज अ आउटसाइडर, एज अ वो क्रिकेट एनालिस्ट, हम लोग कुछ चीजें देख सकते हैं डेटा को देख के, तो मेरे ख्याल में पीसीबी के पास भी पोटेंशियल होना चाहिए कि वो भी डेटा को देख के वो लोग डिसीजन लें। अब आपने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की लेफ्ट आर्म स्पिनर वाली, कि अगर उस तरह का डेटा इन्होंने देखा होता तो शायद हमारा एशिया कप हमारे पास होता। तो मेरे ख्याल में ये वाली छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन काफी ज्यादा जरूरी होता है कि इन सब चीजों को कंसीडर करें। फिर आपके पास डेटा पॉइंट्स काफी ज्यादा रेलेवेंट होने चाहिए और आपके पास टीम भी होनी चाहिए मेरे ख्याल में पीसीबी के पास कि जो प्रॉपर डेटा पे काम करे।
तो टीम तो मेरा ख्याल है लेकिन टीम में वो अभी तक वो बात और दमखम नजर नहीं आ रहा फॉर सम रीजन, क्योंकि ये चीजें क्लियरली एविडेंट है। इसमें बहुत ज्यादा आपको कोई एल्गोस लगाने की भी जरूरत नहीं है कि आप डीप एक डेटा एनालिसिस करो, ये तो आपको क्लियरली चीज़ें थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको रैंडमली भी समझ आ जाती हैं। अच्छा नेता साहब के कमेंट्स आ रहे हैं, कैसर भाई के कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग बैटिंग के मुतालिक पूछ रहे हो और नेता साहब वो ईसीबी की जो ऑफर आई है उसके मुतालिक पूछ रहे हैं। हम इसको शो के दरमियान में और आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी मुद्दा चल रहा है बॉलिंग का। तो अभी बॉलिंग रिलेटेड अगर आप कमेंट करें ना तो वो हम इसमें शामिल कर सकेंगे, वरना हम ज़रा ऑफ ट्रैक हो जाएंगे थोड़ा सा। अच्छा उमेर, अब देखो हमने बैटिंग लाइनअप जब लास्ट एपिसोड में डिस्कस की थी, जिसने वो नहीं देखी, उमेर ने अपनी बैटिंग लाइनअप प्लेइंग 11 बनाई वर्ल्ड T20 की इसी स्क्वाड के अंदर रह के, और मैंने अपनी बनाई। उसमें हमने ये बोला कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं फेज वाइज कि अगर आप पावर प्ले में देखो तो पाकिस्तान नॉर्मली किन बॉलर्स के साथ जाता है, और हमें क्या सही पैटर्न अपनाना चाहिए, कौन से सही बॉलर्स हमें पावर प्ले से अगर हम स्टार्ट करें और गोइंग फॉरवर्ड, तो आपको क्या लगता है?
यार बिल्कुल, अगर हम ये वाली सीरीज भी देखें पाकिस्तान इंग्लैंड की और इससे पहले जो एशिया कप हुआ है वो भी देखें, तो मेरे ख्याल में कुछ पैटर्न हमें शो हो रहा है। ठीक है, जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं हसनैन की, सही है, हसनैन आपका पहला ओवर बहुत अच्छा कराता है, हमने एशिया कप में भी देखा अच्छी बॉलिंग करा रहा है, इधर इंग्लैंड के अगेंस्ट चौथे मैच में भी हमारे सामने रिजल्ट है, पहला ओवर उसका बहुत अच्छा है, सही है, सेकंड ओवर पे नवाज आ जाता है, वो भी ठीक है, अच्छी ऑप्शन है, आप जा सकते हैं, थर्ड ओवर फिर हम देख रहे हैं हसनैन के साथ, तो मेरे ख्याल में ये वाली चीज बेहतर है, हसनैन को अगर शुरू में ही रखें, शुरू में ही यूटिलाइज करें, क्योंकि हमने डेथ ओवर से जब आते हैं तो डेथ ओवर में हसनैन काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ये वाली बात वही हो जाती है जब हम लोग रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार आप कुमार को ओवर दे देते हो आखिर में, स्कोर खा लेता है 20 रन 24 रन, वही हुआ, वही वाली चीज हसनैन के साथ हुई। तो मेरे
बिल्कुल
ख्याल में हसनैन हसनैन जो है वो हमारा स्टार्ट के ओवर्स के लिए बेहतर है। और हाँ, तो ये वाली बात पे आप क्या कहते हैं
नहीं, आपने
कि
बड़ी प्यारी
हसनैन
बात
को
की
शुरू में
है,
रखना चाहिए एंड पे?
और हमने जो है अपने शो में पीछे भी पिछले एपिसोड्स में ये जिक्र किया है इंजमाम उल हक का, खास तौर पे कि इंजमाम का भी ये ओपिनियन है कि हमारी बॉलिंग लाइनअप में टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, खास तौर पे फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि चलो नवाज और शादाब तो अब एक्सपीरियंस हो चुके हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग में हमारा एक्सपीरियंस की कमी है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और वो हमें कहीं ना कहीं दिखा कि हसनैन की जो लास्ट ओवर था पिछले मैच में भी, वहां पे बाबर की कप्तानी में भी थोड़ा सा फ्लॉ नजर आया, और हसनैन की बॉलिंग में भी, कि आप थर्ड मैन ऊपर रखा हुआ है आपने और आप आउटसाइड ऑफ स्टंप शॉर्ट बॉल करा रहे हो, तो ऑब्वियसली चांसेस ये हैं कि इतनी पेस के ऊपर एज भी लगेगा तो चौका हो जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। अब पावर प्ले पे अगर मैं आता हूं, यहां पे एक जो मैं मुद्दा छेड़ना चाह रहा हूं ना, वो ये है सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन का आपकी। ठीक है, क्योंकि आपका पहला पैटर्न चल रहा है, आप पावर प्ले में नवाज से एक ओवर करवाते हो, हसनैन या नसीम इन दोनों में से जो भी खेले उनसे आप दो ओवर करवाते हो, हारिस एक ओवर करवाता है, ये चार हो गए आपके पास। ठीक है, फिर आप एक ओवर आपने करवाया तीसरे सीमर से, इस लास्ट मैच में वसीम था वो, उससे पहले दहानी था वो, अब आपके पास एक ओवर बच जाता है। यहां पर आप एक ओवर करवाते हो अपने थर्ड सीमर से, मेरा आपसे ये सवाल है कि
बिल्कुल
जो आपके पास सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन है उसको आप यहां पे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि अगर वो हो जाती है तो आपके पास दरमियान में फास्ट बॉलर्स के
देखें,
ओवर ज्यादा बच
ये
जाते
आपने
हैं।
बात बड़ी प्यारी की है, यहाँ पे आपने ये बात बड़ी प्यारी की है कि जो शुरू के 6 ओवर्स हैं वहां पे हम लोग दो सीमर्स को अपने यूटिलाइज करें और उनके वहां पे 2 ओवर्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर अगर उनके वहां पे 2 ओवर्स आ जाएंगे तो हमारे जो बीच वाले ओवर्स है जहां पे हम लोग ज्यादा स्पिनर्स रखते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारा वो जो सीमर है वो वाला सही तरह यूटिलाइज नहीं होता। तो मेरे ख्याल में जो सिक्स ऑप्शन है ना, वो जो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड पे भी बात की थी जब हम लोग अपनी टीम बना रहे थे, वहां पे हम लोगों ने फोर्थ रखा था सीमर एक बंदा ऑलराउंडर जो कि मोहम्मद वसीम था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वो चार सीमर्स के साथ जाना चाहिए, ठीक है, और शुरू में आपका हसनैन के 2 ओवर आ जाए, ठीक है, और उसके बाद 1 ओवर आ जाए आपका नवाज का, ये हो गए 3 ओवर, ठीक है, 1 ओवर आ जाए आपका मोहम्मद वसीम का, 4 हो गए, और नहीं ये
एक
चार
हारिस
हो
का
गए,
हो जाएगा,
और कौन से,
एक
एक हारिस
हारिस
का हो
का,
जाएगा और एक और
ठीक,
दूसरा
और
फास्ट बॉलर
एक
का हो जाएगा,
आपका स्टीमर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा प्यारा कमेंट
बिल्कुल
किया है नेता साहब ने, बिल्कुल रेलिवेंट टू द
क्या
टॉपिक
कहते
है,
हैं?
वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान इज लैकिंग अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। ठीक है, अब ये जो मेरा आपसे पावर प्ले पे मुद्दा उठाने का था ना, वो मुद्दा था ये कि ये जो आपके 6 ओवर्स हैं, यहाँ पे दो दो ओवर्स आपके दो फास्ट बॉलर के निकल जाते हैं और एक हारिस रऊफ का निकल जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 5 ओवर्स
ऐसे
आपके निकल गए, सही है। अब अगर आपके पास जो सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन है वो फास्ट बॉलर की हो या एक पेसर की हो, ठीक है, तो वहां पर आपका एक एक्स्ट्रा पेसर के भी 3 ओवर आ जाएंगे और एक मेन पेसर का भी ओवर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कहीं ना कहीं मिडल में हम 7 से 15 ओवर्स में हम फिक्स्ड हमारा ये पैटर्न हो गया कि हमने स्पिनर से ही करवानी है,
ऐसे ही
नवाज
है,
हो गया, उस्मान
ऐसे ही
कादिर
है,
या शादाब जो भी आ गया,
बिल्कुल ऐसे ही।
और वहां पे अगर बेंटके टाइप का बैटर आपको पड़ जाता है
वही
तो
तो,
आप आपको
वो तो
भी समझ नहीं आती
फेल
हम
है
क्या
यार।
करें हैं।
हाँ और बिल्कुल सही बात है, और जिस तरह हमारा कैप्टन है बाबर आजम, वो काफी कंसिस्टेंट है अपनी अपनी पॉलिसीज के साथ, तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा वो ब्लंडर हो जाएगी ये चीज। तो फोर्थ पेसर की हमें बड़ी सख्त जरूरत है टीम को, और मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम ने जिस तरह फोर्थ मैच में बॉलिंग कराई है, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के लिए ये लोग चार चार अगर हमारे पास पेसर्स आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, जिसमें नसीम आ जाए, शाहीन आ जाए, सही है, और ये हारिस आ जाए, और साथ आ जाए मोहम्मद वसीम, तो आपका प्रॉपर आपका जो है ना फास्ट अटैक बहुत बहुत अच्छा, बहुत स्टेबल हो जाएगा।
बिल्कुल, अब देखो कि इंडिया की टीम को जो एडवांटेज हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपका हार्दिक पांड्या जो है उनका एक फोर्थ सीमर के तौर पर आ रहा है। अब देखो उनके पास भी दो स्पिनर है, एक अक्षर पटेल हो गया, एक चाहल हो गया, ठीक है। फिर उनके पास तीन सीमर्स हैं, हालांकि उन सीमर्स में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जहाँ पे एडवांटेज आ रहा है वो आ रहा है हार्दिक पांड्या का, ठीक है। अब हमारे पास हार्दिक पांड्या टाइप का बैटर, बैटिंग ऑलराउंडर तो कोई भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको मोहम्मद वसीम जूनियर वो बॉलिंग में ओवर्स निकाल देते हैं, और क्योंकि हमारे बैट्समैन की बैटिंग ही नहीं आ रही एंड में, तो वसीम जूनियर इतना केपेबल बैट्समैन है कि वो एंड में हिटिंग कर लेता है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग
बिल्कुल
रहा है
सही है,
कि ऑस्ट्रेलिया में वसीम जूनियर की गुड्डी चढ़ने वाली है, आपको क्या लगता है?
यार बिल्कुल सही बात है। मैं तो जिस तरह याद होगा जो कल हमने बनाई है अपनी जो प्लेइंग 11 है, उसमें भी मैंने रखा है मोहम्मद वसीम को, और उसको रखने की और उसको जो रखा है उसकी वजह भी यही है कि ऑस्ट्रेलिया में चार पेसर्स हमें चाहिए, और मोहम्मद वसीम ही वो अभी अच्छा फिट हो रहा है उस पर, तो
बिल्कुल।
ये
अच्छा,
मेरा इस पर
अभी
बात
ये
है।
राबी साहब सलाम कह रहे हैं आपको, वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम
और राबी साहब ने
अस्सलाम,
ये भी पूछा है कि भाई नसीम शाह इज आउट फॉर दिस टूर्नामेंट, नहीं वाई नसीम शाह इज आउट फॉर दिस टूर्नामेंट। यार अभी आउट नहीं है वो, सिर्फ रोटेशन पॉलिसी
आउट
चल रही
रोटेशन,
है कि ज़्यादा मतलब आप उसको एकदम से मैचेस दे दो तो इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि उसका बॉलिंग एक्शन इस तरह का है कि उसको इंजरी हो जाती है, तो आप वर्ल्ड कप के लिए
यार
उसको
अभी
प्रिजर्व
ये
कर रहे
इन्होंने
हैं।
बड़ी अच्छी बात की, इससे मुझे याद है रोटेशन पॉलिसी से, कि देखें हारिस रऊफ आपके चार मैचेस खेल गए, ठीक है, हारिस रऊफ की पेस हम देख रहे किस लेवल की है,
बिल्कुल
और वो वाली पेस की हमें ऑस्ट्रेलिया में बड़ी शदीद जरूरत है, तो मेरे ख्याल में रोटेशन पॉलिसी में हारिस रऊफ को थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए अभी जो कमिंग मैचेस है,
बहुत प्यारी
ताकि
बात
हम
की
लोग को
आपने,
ब्लंडर ना हो जाए इंजरी
बहुत
का,
प्यारी बात की,
है
और
ना।
इसी बात पे मैं आगे आता हूं। लेकिन पहले ये नेता साहब का कमेंट ले लेते हैं कि ये भी इन्होंने रेलिवेंट सवाल किया है कि हुम विल यू ड्रॉप फॉर वसीम, ठीक है। अगर नेता साहब आपने पिछली वीडियो,
हाँ
आपको याद हो मेरे ख्याल आप पिछले एपिसोड देख रहे थे, उसमें मैंने और उमैर ने प्लेइंग 11 बनाई थी, मैंने ऑप्शन रखी हुई थी कि आइदर यू कैन प्ले इफ्तखार या आप वसीम, क्योंकि आप मतलब इफ्तखार की बैटिंग भी पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही और बॉलिंग तो बाबर आजम सिर्फ मजबूरी में करवाता है, कि जिस तरह लास्ट मैच में उस्मान कादर इंजर्ड हो गया तो आपने इफ्तखार से बॉलिंग करवा ली। अगर आपको लगता है कि स्पिनिंग ट्रैक है तो आप इफ्तखार को खिला लो एज एन ऑलराउंडर, अगर आपको लगता है कि जी विकेट जो है वो पेस फ्रेंडली होगी तो आप वसीम को खिला लो, ये मेरी ओपिनियन थी। लेकिन उमैर की इससे भी एक अच्छी ओपिनियन मुझे लगता है, वह ये है कि उमैर इफ्तखार और वसीम को दोनों को खिला रहा था अपनी प्लेइंग
दोनों को
11
खिला
में।
रहा
तो
है
अगर आपने वो नहीं देखी तो वो पिछली वीडियो हमारी ज़रूर
बिल्कुल।
देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा। मेरा ख्याल है हमने कंसेंससली खुशदिल को ड्रॉप किया, अगर जो आप कहना चाह रहे हो खुशदिल को हमने ड्रॉप कर दिया था,
ऐसा ही है, बिल्कुल
ठीक है।
बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल में जलाल ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में तो फास्ट आपके जो फास्ट बॉलर वो ही डोमिनेट करेंगे ज्यादा, तो जिस तरह आपकी लाइनअप है आप भी मेरे ख्याल में जो मतलब के वहां पे वसीम को ही ज्यादा खिलाएंगे, इफ्तखार
हाँ
स्लैश किया हुआ था ना आपने उस पर, तो मेरे
बिल्कुल
ख्याल में
स्लैश
वसीम ही
था,
ज्यादा फिक्स हो रहा
लेकिन
होगा।
उसमें एक मसला ये होता है जब आप टूर्नामेंट करते हो मतलब सेम पिचेस पे अगर आप खेलते हो, मुझे नहीं पता उधर पिचेस का क्या सीन होगा, लेकिन जनरली एशिया कप में भी आपने देखा था या पीछे भी वर्ल्ड कप में भी देखा था, जैसे जैसे टूर्नामेंट सेम पिचेस पे मैचेस होते हैं थोड़ी स्पिनर्स के लिए एंड में ना हेल्पफुल हो
बैठ
जाती है।
जाती
तो अच्छा, अब आपने जो बात की थी ना हारिस रऊफ की रोटेशन की, ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट रेस किया है, वो कंसिस्टेंटली खेल रहा है। और मैं हारिस रऊफ के बारे में ये भी बताना चाहूंगा कि डेथ बॉलिंग में इस टाइम के ऊपर T20 की दुनिया में ये मतलब मेरे ख्याल में तो ये अनआर्ग्युएबली बोलना चाहिए, लेकिन मैं स्टिल आर्ग्युएबली बोल देता हूँ, डेथ बॉलिंग का किंग है। 2020 के बाद से भाईजान की इकोनॉमी डेथ बॉलिंग में चल रही है 8 की, ठीक है, और इसने
बिल्कुल
32 विकेटें ले चुका है ये डेथ बॉलिंग में करते हुए। सेकंड बेस्ट जो विकेट टेकर है वो है एनगिदी साउथ अफ्रीका का, उसकी 21 विकेटें। तो आप ये देख लो कि गैप कितना बड़ा है और कितना बड़ा ये क्वेश्चन दे रहा है। अब मैं इधर आपको सवाल ये फेंकता हूँ कि हमने देखा है कि नसीम को भी डेथ में मार पड़ जाती है एशिया कप का फाइनल, याद होगा हसनैन का पिछला मैच, हसनैन इनकंसिस्टेंट होता है उसको मार पड़ जाती है, दहानी को भी अक्सर डेथ बॉलिंग में मार पड़ जाती है, इवन शाहीन को भी मार पड़ जाती है। अगर हारिस रऊफ आपकी डेथ बॉलिंग का पार्ट नहीं होता तो फिर क्या होगा आपके साथ?
फिर यार फिर वही होगा जो बाकी बॉलर्स करें, जैसा स्नैन ने 24 खाया था उससे पहले। अगर हम वो फाइनल की बात करें एशिया कप की, एशिया कप में जो नसीम शाह ने 2 छक्के खाए थे आखिर में, तो मेरे ख्याल में हारिस रऊफ को तो हम लोग किसी तरह भी ड्रॉप नहीं कर सकते आखिरी ओवर्स के लिए। मेरे ख्याल में जलाल हारिस रऊफ का जो सही आप कहते हैं कॉम्बो बन सकता है जो डेथ ओवर्स में, वो बन सकता है वसीम जूनियर के साथ। वो वाला मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो ट्रिकी बन जाता है, क्या ख्याल है?
देखो अब वसीम जूनियर, देखो अब पहले लोग अक्सर कहते हैं कि वसीम जूनियर को रन्स पड़ जाते हैं, ये पड़ जाते हैं, नो डाउट पड़ जाते हैं, लेकिन वसीम जूनियर कहीं ना कहीं आपकी बैलेंस देने के लिए ना टीम को बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक उसकी पेस भी ठीक ठाक पेस है, कोई इतनी माड़ी पेस नहीं है, फिर उसके यॉर्कर्स भी अच्छे हैं। अगर आप ODIs में देखो, क्योंकि T20s तो इस साल पाकिस्तान ने बड़े कम खेले हैं, अगर आप ODIs में लास्ट एक ईयर देखो ना, जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग डेथ बॉलिंग पेयर था ना, वो ये था कि आप 2 ओवर डेथ में कराते थे हारिस रऊफ से, 1 ओवर आप करवाते थे शाहीन से, और 1 ओवर आप कराते थे वसीम जूनियर से। ठीक है, तो ये आपने बड़ी प्यारी बात की है। इसके साथ अगर वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में आपके पास एक एक्स्ट्रा सीमर आ जाता है, नसीम या हसनैन, जिसको भी आप खिलाते हो, तो उसको आपको भूवी की तरह, जिस तरह हम इंडिया का बात करें कि उसको आपको अर्ली यूटिलाइज करना पड़ेगा। मे बी यू कैन इवन बॉल देम आउट के 3 ओवर्स आप पावर प्ले में करा लो, या 2 ओवर्स पावर प्ले में करा लो, 1 ओवर 5-6 से 10 ओवर्स के दरमियान करा लो, या 1 ओवर फिर आप 10 से 15 के दरमियान करा लो, और उनको अर्ली खत्म कर दो, ठीक है, ताकि वो डेथ में उनका वो चांस ना हो मार पड़ने का। क्या कहते हैं इसके ऊपर?
बिल्कुल यार, बिल्कुल जेन्युइन बात है, फैक्चुअल बात है, एक डेटा ड्रिवन बात है, तो इससे मैं आपके एग्री कर रहा हूँ बिल्कुल। अब जलाल यहाँ पे एक और बात है जो मेरे ख्याल में वसीम अकरम ने भी की थी कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनके पास टेक्निक तो है, उनके कि उनको सीम भी कराने आती है, अच्छी बॉल करा रहे हैं पिचेस के भी हिसाब से, लेकिन ये लोग मार खा जाते हैं लैक ऑफ एक्सपीरियंस में। तो उस वो वाली चीज को अभी देखिए, वर्ल्ड कप सामने खड़ा है, सही है, अगले 2-3 हफ्ते बाद आपका वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा, तो जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस वाली चीज है हमारे पास अभी, उसको हम लोग किस तरह मतलब खत्म कर सकते हैं, मतलब वो काउंटर कर लें उस चीज को
यार। उसमें यही मुझे जो लग रहा है ना, आपको ना ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, कि आपको ये क्वेश्चन रखना पड़ेगा कि एक ने एक दिन इनमें से किसी बॉलर को मार पड़ेगी तो आपका फॉल बैक क्या है। अब वही रिजिडिटी नजर आ रही है बाबर की कप्तानी में, कि बाबर 6th या 7th बॉलिंग ऑप्शन को यूटिलाइज ही नहीं करता। अगर उस्मान कादिर को भी इवन देखो इस मैच में मार पड़ी है, तो होपफुली शादाब वापस आ जाएगा वर्ल्ड कप में, लेकिन अगर उस्मान कादिर की भी एग्जांपल लें, उसको मार पड़ रही है लेकिन आप उसको स्टिल खिला कर रहे हो, मतलब बॉलिंग करवा रहे हो डकेट के आगे, इवन तो आपके पास इफ्तिखार एज एन ऑफ स्पिनर मौजूद है, तो वहां पर तो कोई लॉजिक और रीजनिंग समझ नहीं आ रही ना, कि भाई आप कर क्या रहे हो, मतलब क्या कप्तानी कर रहे हो, या क्या आपके कोई डाटा एनालिसिस वाली टीम क्या उधर बैठ के कर रही है। ठीक है ना, आप उधर अच्छा, फिर आपके पास क्योंकि पेसेस भी सिर्फ आप 3 खिला रहे हो, तो फिर आपके पास वो क्वेश्चन भी नहीं है कि आप दरमियान में पेसेस से एक्स्ट्रा ओवर्स करवा लो, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो 6th बॉलिंग जो ऑप्शन है आपके पास, वो अगर पेसर की होगी मोहम्मद वसीम को, और मोहम्मद वसीम को एज अ 3rd सीमर नहीं खिलाना हमने, मोहम्मद वसीम को एज अ 4th सीमर खिलाना हमने, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा।
बात सही की है, ये बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि हमने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी देखा और जो कल के मैच में भी देखा कि वो एज अ प्रॉपर सीमर खेल रहा था, मतलब कि ये लोग 3 ही इन्होंने सीमर रखे थे, तो जरूरी है यार इस तरह के स्टेप लेना। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बॉलिंग में जो फ्लॉज है उस पर कोई उस तरह बात नहीं हो रही, होनी चाहिए मेरे ख्याल में, ताकि और बेहतर हो जाए, तो ये सीन है।
नहीं, पिछले एक एपिसोड में किसी ने पॉइंट रेस किया था, तो हमने ही उनको बोल दिया था यार एक ही तो हमारा मतलब अच्छा चल रहा है यूनिट, लेकिन अगर रियलिटी देखें अच्छा, तो थोड़ा सा मस्ता चल रहा है। अच्छा एक पॉइंट आपके पॉइंट पे आने से पहले, एक मिनट उस पर सवाल लेने से पहले मैं आता हूँ कि एक मेरा पॉइंट वो फिर मुझे भूल जाएगा, कि वसीम जूनियर पे एक्सपेंड और लास्ट करूं, कि देखो हमने ये नोट किया कि बाबर आजम को वसीम जूनियर के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो उसको एज ए 3rd सीमर भी खिला लेता है। ठीक है, हमने पूरा साल पीछे देखा, वो कॉन्फिडेंस बाबर आजम का ना खुशदिल में नजर आता है ना इफ्तिखार में नजर आता है, मजबूरी में वो इफ्तिखार से बॉलिंग करवाता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि गोइंग टू द वर्ल्ड कप वसीम जूनियर शायद बाबर आजम की भी फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस होगा एज अ सिक्स्थ बॉलर। तो बस ये मेरा था एक पॉइंट।
यार बात मैं इसमें बस ऐड ऑन करूंगा कि सिक्स बॉलर तो वो तो बनता है, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन बाबर आजम को लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया में नवाज को पड़ जाती है काफी, या शादाब को पड़ जाती है, या वाइस वर्सा किसी को भी पड़ जाती है, तो वहां पे इफ्तिखार को वहां पे ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बॉल कराई है और वो एज अ थर्ड ऑप्शन वो स्पिनर्स के लिए आ सकता है इन केस शादाब और नवाज अगर स्कोर खाते हैं।
नहीं बिल्कुल जबरदस्त बात की है नेता साहब। बिल्कुल देखो रेलेवेंट टू द टॉपिक कमेंट कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जी टू यूज अ सिक्स्थ बॉलर कैप्टन नीड्स टू हैव कॉन्फिडेंस इन हिम, इवन रोहित डिडंट यूज हुडा इन एशिया कप। ठीक है
सही बात,
देखो बिल्कुल प्यारी
सही
बात की
बात,
है। हमने ये देखा कि इवन हुडा को ना सिर्फ एशिया कप में, उससे पहले भी सेल्डमली यूज हो रहा था वो जो पहले सीरीज खेले हैं वो। और वही मेरी बात है कि बाबर को भी कहीं ना कहीं इफ्तिखार और खुशदिल पे तो बिल्कुल ही नहीं कॉन्फिडेंस लग रहा ना। खुशदिल पे तो उसने बॉलिंग ही नहीं करवाई।
यार अब इन्होंने यहां पे बात की है ना, ये बात तो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से नगरजुना नेता, लेकिन देखे हमने देखा इंडिया में रोहित शर्मा को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है बूबी पे, जो डेथ ओवर्स पे,
कुछ ज्यादा ही
मतलब मैं उसकी
कॉन्फिडेंस है मेरे
स्टोरी भी सुन रहा था,
भाई।
काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस की भी कुछ एक लिमिट होनी चाहिए, वाले जब 3 मैचेस में ट्राई कर लो, 4 में उससे ज्यादा मेरे ख्याल से ये चीजें खराब हो जाती हैं, तो वही इसी बात पे मुझे याद है कि रोहित शर्मा को भी काफी कॉन्फिडेंस है उस पे मूवी पे, लेकिन खाली
बिल्कुल
कॉन्फिडेंस मैटर नहीं करता मेरे ख्याल में, स्टैट्स भी साथ देख ले। अच्छा है
कैसर अहमद साहब कह रहे हैं शाहीन आफरीदी खेलेगा। मेरा ख्याल है इनका कहने का मतलब है कि जब शाहीन आफरीदी वापस आ जाएगा तो वो जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की आप पॉइंट रेस कर रहे थे वो भी थोड़ा सा कवर हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा तो कवर हो जाएगा, बट आपको ये नहीं पता कि शाहीन आफरीदी अनफिट हुए थे, अब फिटनेस बहाल करके जब वो आएंगे तो किस रिदम में और किस फॉर्म में होंगे, तो उनसे ये राइट अवे हम
जलाल,
एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
इन्हीं की बात पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी शाहीन आ जाता है टीम में, ठीक है, हमने शाहीन को देखा कि वर्ल्ड कप में काफी एक्सपेंसिव रहे थे आखिरी ओवर्स में, तो आप क्या समझते हैं कि शाहीन होना चाहिए ट्राई डेथ ओवर्स में, खासतौर पे 20वां, 19वां, 18वां और 18th ओवर?
यार वही जो मैंने पहले बताया कि अगर आप डेटा स्टैट्स देखो ना तो आपके जो लास्ट 4 ओवर्स हैं उसमें जो बेस्ट बॉलिंग पेयर्स हैं वो यही बनता है कि आप 2 ओवर हारिस से करवाओ, 1 ओवर आप शाहीन से करवाओ और 1 ओवर आप वसीम से करवाओ। ठीक है तो ये तो आपका बेस्ट एक परफॉर्मिंग कह लो कि इवन दो इसमें भी मार पड़ जाती है, ऑब्वियसली डेथ बॉलिंग में किसी न दिन तो मार पड़ेगी पड़ेगी यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट
बिल्कुल
हसनैन और नसीम और दहानी में से अगर आपको चूज करना हो तो मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये 3 ज्यादा बेहतर डेथ बॉलर्स हैं पाकिस्तान के लिए।
सही हो गया, बेहतरीन है।
ठीक है अच्छा अब ये अब आ जाओ भाई उसके ऊपर जो ब्रेकिंग न्यूज थी। ब्रेकिंग न्यूज को हमने ब्रेक करके पहले शुरू में थोड़ा सा अनाउंस किया लेकिन हमने फिर बीच में ब्रेक लगा दी। अच्छा शुरू में नेता साहब ने भी बात की थी इसकी, अब SS98 भी बात कर रहे हैं कि ECB ने जी ऑफर मारी है उमेर साहब पाकिस्तान को और इंडिया को कि जी हम होस्ट करते हैं, आप टेस्ट सीरीज खेलें इंग्लैंड में आके। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस
यार
पे?
मैं कहता हूं कि इतनी अच्छी बात कर दी ना ECB ने, कि देखें यार पाकिस्तान इंडिया अगर इंग्लैंड में खेलेंगे तो कितना मजा आएगा, उधर की पिचेस आपको पता है, हम उधर की पिचेस कितनी फिट होती है, तो बहुत अच्छा स्टेप है भाई, ये 15 साल बाद हम कोई टेस्ट सीरीज देखेंगे इन दोनों की खेलते हुए,
अच्छा
और बड़ा अच्छा
अब
स्टेप है, और इस पे क्रेडिट जाता है रमीज राजा को भी, क्रेडिट जाता है इस चीज का, उन्होंने भी काफी ज्यादा निगोशिएशन की थी, अगर आपको याद हो जब वो गए थे इंग्लैंड, उन्होंने ये वाले टॉपिक पे भी आई थिंक बात की थी,
बिल्कुल अब
तो क्या
मुझे
कहते हैं आप?
आपकी आपकी बात से लगा आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो कि जैसे ये सीरीज हो ही जाएगी। सही है अभी नेता साहब ये कह रहे हैं कि BCCI ऑफिशियल्स ने कहा है कि इंडिया विल प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान आई थिंक ओनली इन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स, मतलब बायलैटरल टूर्नामेंट्स में इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। ठीक है तो एक तो वो बात होगी और काफ़ी ऐसे से हमने ये बात सुनी हुई है कि सिर्फ इंडिया हमसे ICC टूर्नामेंट्स या एशिया कप में ही खेलता है, उसके अलावा हमसे नहीं खेलता इंडिया। ठीक है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की हो। अच्छा SS98 साहब भी ये कह रहे हैं कि ECB इज जस्ट नॉट सीरियस, दे शुड हैव आस्क्ड BCCI ऑल्सो बट सीम्स लाइक दे आर जस्ट फूलिंग अस। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है कि मे बी रमीज राजा ने बात की हो और मे बी ईसीबी ने ऑफर कर दी हो, बट बीसीसीआई ऑन बोर्ड ना हो, क्योंकि हमें पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं मुश्किल ही है कि भाई इस तरह का कोई काम हो। क्या कहते हो आप?
यार मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो तो फिर ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई और होस्ट कर रहा है आपका, तो उसमें तो इतना इतना इशू नहीं होना चाहिए।
नहीं, लेकिन अगर बीसीसीआई ने ये स्टैंस दिया हुआ है कि हमने बायलैटरल सीरीज खेलनी नहीं है पाकिस्तान के साथ, हम सिर्फ वही टूर्नामेंट्स
हाँ
खेलेंगे, तो फिर
अगर
तो नहीं हो सकती ना।
हाँ जाहिर है अगर स्टांस दिया हुआ है फिर तो
देखो, इसीलिए
पॉसिबल नहीं
रमीज
है।
राजा ने फ्लोट की थी वो जो फोर नेशन टूर्नामेंट था ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, कि उन्होंने बोला था काइंड ऑफ लाइक इंडो पाक राइवलरी प्लस एशेज की राइवलरी, वो एक साथ अगर एक टूर्नामेंट में हो जाए ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा आइडिया था। और उसमें ऑब्वियसली आईसीसी को भी बहुत पैसे मिल सकते हैं अगर कोई इस तरह का टूर्नामेंट टूर्नामेंट शायद हो जाए। अच्छा जी,
बिल्कुल
ये देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं राबी साहब। अच्छा, आप थोड़ी सी ये बैटिंग पे भी कमेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि बैटिंग पे कमेंट्स तो हर दफ़ा आते हैं, क्योंकि
बिल्कुल
आपको पता है
हाँ
पाकिस्तानी
हाँ
बैटिंग
बिल्कुल
कोलैप्स कर रही है।
खास तौर पे खुशदिल।
खुशदिल बड़ा बेचारा। अच्छा, खुशदिल पे ये इस पे राबी साहब कह रहे हैं कि कैन हारिस सोहेल बी इन पाकिस्तान स्क्वाड। खबरें तो आ रही हैं सर, अब पता नहीं ये किस
कुछ
हद
कह
तक
नहीं
ठीक
सकते,
हैं।
50-50 ही लग रहा है। खबरें आ रही है लेकिन ये लाइम लाइट पे आए हुए किसी तरीके से। अच्छा जलाल, यहाँ पे क्वेश्चन है, अभी हम बैटिंग पे आ ही गए, चले आप मुझे बताएं। आसिफ अली की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सही है? आसिफ अली का हमने देखा जब इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलता रहा पीएसएल में, तो वो आया वन डाउन, ठीक है, काफी दफा। तो वन डाउन पे जब आया है, जब 12 ओवर हो जाते हैं उसके बाद जब वो वन डाउन आता है तो काफी ज्यादा स्कोर मार जाता है। तकरीबन आपको याद होगा 230 मारा था जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। तो क्या ख्याल है आप, जो आसिफ अली है इसकी पोजीशन को आप कैसे देखते हैं? अभी हम देखते हैं कि 18वें ओवर पे ये आता है, 19वें पे आता है। अगर ये ऊपर आ जाए तो आपको लगता है कोई स्ट्रेटेजिक लॉस है पाकिस्तान का?
यार नहीं, मुझे तो लगता है आपकी बात में वजन तो है। देखो, हमने जो लास्ट अपनी प्लेइंग 11 बनाई लास्ट एपिसोड में, उसमें हमारा, हम दोनों का यही तो था एक कंसेंसस, मतलब बंदों में थोड़ा फर्क था। मैं कह रहा था कि आसिफ अली लास्ट 5 ओवरों में बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन देखो फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको लानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि बाबर और रिजवान के बाद कोई नंबर फिक्स्ड है कि जी अब तीसरे पे शान ही आएगा या तीसरे पे हैदर ही आएगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आपने ये देखना है कि किस ओवर में बाबर और रिजवान आउट हुए हैं, उस हिसाब से आपने प्लेयर भेजना है। अगर लेट से मेरा ख्याल है कि 12वें 13वें ओवर में जाके विकेट गिरती है, वहां पे आप आसिफ से बिल्कुल चांस ले सकते हो कि भाई अगर आके वो 2-4 छक्के मार के आउट भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं, इवन 0 पे भी
कोई
आउट हो
मसला
जाते हैं तो
नहीं,
कोई मसला नहीं है, मतलब उनसे कोई
तब
उस
भी
तरह
कोई मसला
एक्सपेक्टेशन है नहीं।
नहीं
देखो नवाज,
ऐसे ही है।
देखो वसीम जूनियर का भी बहुत फायदा है। अब वसीम जूनियर को लोग अंडररेट करते हैं, उसमें बड़ी हिटिंग कैपेबिलिटी है, वो आपके पास एक बोनस है। ठीक है, आप वसीम जूनियर को भी मैं कहता हूं एक आध मैच में ऊपर बेच के देखो, उसे पता तो चले ना। इसी तरह प्लेयर बनते हैं, जैसा हमने पिछले एपिसोड में एग्जाम्पल दी कि रजाक को 1999 वर्ल्ड कप में वसीम अक्रम ने ऊपर वन डाउन पे भेजना शुरू कर दिया
वन
था।
डाउन
ठीक है,
भेजा।
अब वो पहले पार्ट प्लान ऑफ प्लान का पार्ट नहीं था, लेकिन वो सडनली डिसाइड किया और वो वर्कआउट कर गया। इसी तरीके से आपको प्लेयर बनाने पड़ेंगे। अच्छा, इधर एक और कमेंट था कोई बैटिंग रिलेटेड, शर्जील खान के बड़े
अच्छा
फैंस हैं
यहाँ पे
भाई।
एक और अच्छा कमेंट आया हुआ, कमेंट पढ़ लें भाई।
कैसर अहमद साहब कहते हैं शर्जील
शर्जील
खान को
खान का
शामिल
तो
करेंगे क्या
जाहिर है,
वर्ल्ड कप
आपको पता है
स्क्वाड
मुझे भी
में?
शर्जील खान पसंद है भाई।
हाँ यार, मुश्किल लग
वर्ल्ड
रहा
कप
है भाई।
स्क्वाड में तो कैसर भाई बड़ा मुश्किल है, वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो मुश्किल है। हो सकता है वर्ल्ड कप के बाद आ जाए। और बाकी जो शर्जील खान, आपको पता है कोई, मैं भी फैन हूँ वैसे शर्जील खान का, उसकी भी शॉटें बड़ी बड़ी लेवल की हैं। तो लेकिन क्या करें, बाबर और रिजवान ऊपर से मतलब कि वो अपनी जगह छोड़ नहीं रहे, तो
देखो,
मुश्किल है।
फखर और शान को ओपनिंग का मौका नहीं मिल रहा, तो अब कहाँ शर्जील को कहाँ से
अच्छा
मिलेगा यही मसला है ना।
जलाल, हमने कल जब लाइनअप बनाई ना, तो मैं रात को सोच रहा, मैंने कहा यार एक और यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क है लेकिन थोड़ी होनी चाहिए। अगर लेट्स सपोज अगर हम ऐसे करें, देखें आपका लेट्स सपोज 6ते 7वें ओवर में आउट हो जाता है बाबर रिजवान, ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ी ज्यादा रिस्क के साथ चले जाएं, आसिफ आ जाए, आसिफ के बाद खुशदिल आ जाए, एज अ ट्राई इंग्लैंड वाली सी इसकी बात करो,
यार
इसको
होना तो
अगर हम
यही
ट्राई
चाहिए,
करने
क्योंकि
तो।
अभी जो सबसे बड़ा एक खुशदिल की डिफेंस में चीज आ रही वो ये आ रही है कि खुशदिल को बेस्ट मौका नहीं मिला अभी तक, ठीक है? सिर्फ एक हांगकांग वाले मैच में आप कह सकते हो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल गया था, लेकिन वो जब भी उस सिचुएशन में आता है वहां पे रिक्वायरमेंट यही होती है कि एक अनरियलिस्टिक सी उससे आस्क होती है कि आपने आके बॉल वन से मारना है। हालांकि खुशदिल वो प्लेयर नहीं है, वो
वो
हम
प्लेयर
बता
ही नहीं
चुके
है।
हैं कि खुशदिल आइडियली 13-14 ओवर्स के बाद आने वाला प्लेयर है, वो आखिरी 2-3 ओवर में उसको भेजना बेसिकली जाया करने वाली बात है। उससे बेहतर है आपको पूरा बैट्समैन खिलाओ या पूरा बॉलर खिला लो, ठीक है? वो जाया करने वाली बात
ऐसा
है।
ही है।
और एक और डिफेंस भी है खुशदिल का, हमने ये देखा कि जब खुशदिल आउट हुआ है लास्ट मैच में तो पूरे क्राउड में पर्ची पर्ची के नारे लगने शुरू हो गए। तो मैं ये
हाँ, ये
बोलूंगा
बड़ा
यार
अच्छा
ये
पॉइंट है।
बड़ी ज्यादती है कि खुशदिल टीम में परफॉर्मेंस दे के आया है, वो आपका PSL में देखो वो ऑलराउंडर बड़ा अच्छा, मेरे ख्याल से बेस्ट ऑलराउंडर वही था। अब आप उसे बॉलिंग ना कराओ तो एक अलग बात है,
यार
लेकिन ये अनकॉल्ड फॉर है यार।
इवन पीएसएल में भी, और जो पहले नेशनल सीरीज जो हुई थी नेशनल T20, उसमें भी बड़ा अच्छा खेला था खुशदिल। तो पर्ची वाली बात कहना तो थोड़ी ज्यादती है उसके साथ, क्योंकि
बिल्कुल
मैंने
जाती
सुना है,
यार।
ट्वीटें भी देखी हैं कि जब वो आया था क्रीज पे, इवन फील्डिंग पे भी जब खड़ा था तो सारा क्राउड पर्ची पर्ची लगा हुआ था। तो खैर, पाकिस्तान का क्राउड है, हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
यार लेकिन एजुकेट करना चाहिए ना, ये तो बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है कि एक बंदा परफॉर्मेंस दे के टीम में आया है, अब टीम में आके उसे परफॉर्मेंस ना हो तो आप उस पर क्रिटिसाइज कर लो कि यार ठीक है उससे नहीं हो रही बैटिंग, नहीं उससे परफॉर्मेंस हो रही, तो आप ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, उसको ड्रॉप ही कर सकते हो ना। लेकिन अब ये तो फिर वही वाली बात है जो सकलैन मुश्ताक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर दी थी कि ये तो कहीं ना कहीं वो
कुदरत
नहीं, वो जो कह रहे थे कि आपकी शक्ल को बोलना शुरू कर दे कि आप ऐसे दिखते हो तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे बार बार अगर आपको बोला जाए, अब पर्ची पर्ची बोलोगे। ये हमने इमाम के साथ भी बाय द वे देखा था, शुरू में
इमाम के
जब
साथ,
इमाम उल हक
हाँ,
आता
लेकिन
था तो
उसने बकअप किया। हाँ
सारे क्राउड में उसको पर्ची पर्ची बोलते थे, फिर उसने अपनी परफॉर्मेंस से सबका मुंह बंद कर दिया, तो मेरे हाल है खुशदिल को भी
बिल्कुल।
ये करना पड़ेगा।
अच्छा, अब मुझे एक और बात बताएं, कल मैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, इंग्लैंड वाला 5वां, और हम लोग देख रहे हैं खुशदिल की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही, ठीक है, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में खुशदिल है। तो आप क्या समझते हैं कि 5वें में इसको खिलाना चाहिए या नहीं?
यार देखो बात तो आपने कर दी है, मैं तो वैसे इस हक में था कि अब आपने आमिर जमाल वगैरह को स्क्वाड में रखा है तो मैं देखना चाह रहा था आमिर जमाल का, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको वसीम जूनियर की बात की है सिक्स बॉलिंग ऑप्शन की ऑस्ट्रेलिया में पेसर की जरूरत होगी, मुझे कहीं ना कहीं आमिर जमाल को देखना चाह रहा हूं मैं। क्या पता कि वो लड़का परफॉर्मेंस दे दे और आपको लगे कि यार ये वर्ल्ड कप में जा सकता है लड़का, ठीक है? एज अ सिक्स बॉलिंग ऑप्शन या मोहम्मद वसीम का बैकअप कह लो, या मोहम्मद वसीम और आमिर जमाल में भी एक साथ खेल सकें टीम में, तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खिलाता है मार्कस टोइनस को, मिचेल मार्श को, अब इवन कैमरून ग्रीन आ गया, तो मैं तो देखना चाहूंगा उसको। अब आपका क्या ओपिनियन है?
नहीं, मेरा इस पे ये है कि देखिए, मेरे ख्याल में जो आमिर जमाल है वो तो काफी यंग है, ठीक है, और उसको अगर वर्ल्ड कप लेके जाएंगे तो वो मेरे ख्याल में कोई सही चीज नहीं है इतनी। अगर इन्होंने, मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि अगर खुशदिल को इन लोगों ने रखा हुआ है स्क्वाड में, तो एटलीस्ट उसको एक दो चांस और दे दें, ठीक है, ताकि केस थोड़ा स्ट्रांग बन जाए, और ये फिर तो फिर जो हमारे रिजर्व में प्लेयर है वो ऊपर आ जाए, या हैदर अली है उसकी जगह बन जाए टीम में,
अच्छा देखो ये जो
ठीक
आपने, वैसे मैं आपकी आर्गुमेंट मानता हूँ कि जो आप कह रहे हो कि खुशदिल को चांस और दे दें ताकि एक चीज़ हो जाए, लेकिन दूसरा आर्गुमेंट नहीं मैं मानता कि आमिर जमाल यंग है, 26 साल का वो लड़का हो चुका हुआ है, ठीक है? खुशदिल मेरा ख्याल है कितना,
नहीं,
28-27 साल का, मैं मान
एज
रहा हूँ,
वाइज
मैं मान रहा
एक्सपीरियंस
हूँ
वाइज कह रहा
यार। आमिर का क्या एक्सपीरियंस है मोहम्मद आमिर का जब आप वर्ल्ड कप में लेके गए थे उसको, ठीक है? मोहम्मद आमिर का क्या
हूँ।
एक्सपीरियंस
हाँ,
था,
उनका भी
या
कमेंट
सुहेल तनवीर का क्या एक्सपीरियंस था जब आप उसको वर्ल्ड कप में लेके गए थे? तो आपको ये करना
नहीं,
पड़ेगा,
आप
देखो रिस्क
कंप्लीटली
है ना,
करेक्ट।
आप ट्राई तो करो ना,
नहीं
जब आप ट्राई नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा?
यार, ट्राई करो, लेकिन फिर ट्राई अगर इस तरह करना है तो फिर ये शुरू वाले मैचेस पे भी कर देते हैं, मतलब थर्ड मैच से उसको स्टार्ट कर
नहीं
देते
आप
हैं,
देखो, आपको ये
अगर
बंदा ये
इन्होंने,
तो
ये
नहीं कह सकता ना कि
मेरे ख्याल
खुशदिल
में,
को चांस नहीं मिला, चांस तो मिला है खुशदिल को, ठीक है? अगर अब खुशदिल को बिठा भी देते हैं तो कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं यार खुशदिल ने बड़ी कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी हुई थी, आप बिठा सकते हैं इसको।
यार
लेकिन आप, आपकी बात भी
खैर,
ठीक है कि पूरी सीरीज दे दो और फिर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह।
हाँ, नहीं, और दूसरा आप ये भी देखे ना, जिस तरह मोहम्मद वसीम की भी कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, उन्होंने बोला कि मैंने अपनी टीम डिसाइड की हुई थी बेंच प्लेयर्स के साथ 15 बंदे, कि इन्हीं को मैंने ट्रेन करना है, सब कुछ करना है अगले वर्ल्ड कप के लिए। तो अगर ये एकदम इंस्टेंट इस तरह की चेंज आएगी तो फिर तो काफी बातें होंगी। अगर लेट्स वो आमिर जमाल की यहाँ पे बात करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे जिस तरह हम बोलेंगे शर्जील को ले आओ, फिर लोग बोलेंगे शुएब मलिक को ले आओ, वो बेहतर था ऑप्शन। तो वो
यार
वाला
नहीं,
पॉइंट थोड़ा
देखो
मेरे माइंड में आ
आपका
रहा है।
मसला कहाँ आ रहा है, आपको आपके हिटर, सो कॉल्ड हिटर्स हिटिंग नहीं कर पा रहे ना, मतलब खुशदिल शाह परफॉर्मेंस नहीं दे रहा क्योंकि एंड में वो हिट नहीं कर पा रहा। अब उसकी रिप्लेसमेंट उसने ये बोला था, मोहम्मद वसीम साहब ने ये बोला था कि भाई आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, जो कि हमें, हमने जो शुरू में डिस्कशन की है उसमें क्लियरली मोहम्मद वसीम जूनियर की हमने बात की है, बहुत क्रूशल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मोहम्मद वसीम जूनियर पर क्यों रिलाय करते हो, क्या पता आमिर जमाल भी, आई एम नॉट सेइंग कि वो कर जाएगा, लेकिन हु नोस कि वो प्लेयर आपको लगे कि यार ये इसमें एक्स फैक्टर है, ये हमें बैटिंग में भी मैच जिता सकता है, ये हमें बॉलिंग में भी मैच जिता सकता है। जैसा कैमरून ग्रीन को ट्राई किया है ना ऑस्ट्रेलिया ने, क्यों ट्राई किया है, उनको नजर आ गया ना। अब एक्सपीरियंस क्या है कैमरून ग्रीन का, उसने तो T20 खेले ही नहीं हुए थे, मतलब आपने उसको खिला दिया और अब आप बात करो कि उसको वर्ल्ड कप में ले जाओ।
लेकिन अब देखे ना, इसमें एक और बात है, हम लोग यहाँ पे बात करें रिप्लेसमेंट की, वो जो हम लोग यहाँ पर रिप्लेसमेंट बात करें खुशदिल की, ठीक है। अब खुशदिल की रिप्लेसमेंट के हिसाब से तो आमिर जमाल उस तरह नहीं बनता ना। अगर लेट्स सपोज मोहम्मद वसीम परफॉर्म ना कर रहा होता है यहाँ पे, तो फिर हम कह देते कि यार ठीक है, उसकी रिप्लेसमेंट में आमिर जमाल आ जाएगा।
अच्छा खुशदिल की रिप्लेसमेंट है, कैसे नहीं बन सकता मुझे बता, खुशदिल का क्या रोल है टीम में?
खुशदिल तो वो तो आपका पावर हिटर है ना।
हाँ तो आमिर जमाल का क्या रोल होगा बैटिंग में?
वो तो आपका ऑलराउंडर है।
अबे खुशदिल भी ऑलराउंडर ही था ना, बॉलिंग ना कराओ तो एक अलग बात है।
बात ये कि उसको जो बाबर यूटिलाइज कर रहा था, वो एज अ बैट्समैन कर रहा था। हाँ, वो एज अ
तो
टॉप
वो
हिटर
तो
कर रहा
बाबर का मसला है ना, आपके चीफ सेलेक्टर ने तो उसको एज एन ऑलराउंडर सेलेक्ट किया था ना मेरे भाई,
यार
और वो एज अ हिटर है,
मेरे
आमिर
भाई। लेकिन
जमाल का
आप
भी सेम है।
बात नहीं समझ रहे ना, आपने तो चलना बाबर के हिसाब से, प्लेइंग 11 तो बाबर बनाएगा,
यार आपको मैं
वो
आपसे
वाले
आपका
पॉइंट ऑफ
ओपिनियन
व्यू से
पूछ
सोच
रहा
रहे
हूँ,
ना।
मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि बाबर क्या करेगा,
तो
मैं ये
भाई
पूछ,
मैं आपको वही ओपिनियन दे रहा हूँ ना, उसी हिसाब से दे रहा हूँ।
चलो एनीवेज अब इस पे क्या ड्रैग करें, मेरा तो
चलो
क्लियर ओपिनियन है कि आमिर जमाल को चांस देना चाहिए, अदरवाइज स्क्वाड में रखने का फायदा नहीं। अच्छा इसी पे आप उस पे चलो कि उस्मान कादिर है, अब वो इंजर्ड हो गया, इफ्तिखार ने अच्छी बॉलिंग कर दी, हमने देखा है इस पूरे 3 मैचेस में जो भी उसको मिले हैं, इवन एशिया कप में जिसको मैच एक मिला था बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे सका, जो बॉलें लैंड होती हैं वो अनप्लेबल हो जाती हैं, लेकिन मसला ये है कि बॉलें लैंड नहीं होती, ठीक है। अब अबरार भी रखा हुआ है आपने स्क्वाड में, ठीक है, मिस्ट्री स्पिनर की आपको पता है हमारे सर्किट में पिछले कुछ सईद अजमल के बाद से कोई भी नहीं आया, सईद अजमल को हम मिस्ट्री जैसे कह रहे हैं क्योंकि दूसरा उनका वट्टा वाला पता नहीं चलता था, एनीवेज वो एक अलग बात है। अबरार को क्या चांस मिल देना चाहिए कादिर की जगह, ये नहीं
यार, उस्मान कादिर जैसे हम देख रहे हैं इंजर्ड है अभी, सही है, थोड़ा फिंगर का इशू है उसका, तो मेरे ख्याल में जगह दे दे। और अगर उस्मान कादिर आपका ठीक रहता है तो फिर तो मेरे ख्याल में उस्मान कादिर ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं उस्मान कादिर की बॉल जो है वो सही तरह लैंड नहीं हो रही। तो अगर हो सकता है इस तरह के मैचेस खेले, थोड़ा प्रेशर में खेले, पिच उसकी जो लाइन है बेहतर हो जाए, तो उस हिसाब से उस्मान कादिर है। हाँ,
मतलब आप
आप
कह
क्या
रहे हो
कहते हैं?
कुदरत का निज़ाम जब वर्क कर देगा उस्मान कादिर के लिए
नहीं
कि
नहीं नहीं कुदरत का निजाम नहीं,
एक न
कुदरत के
एक दिन
निजाम की
लैंड हो
बात ही
जाएगी
नहीं है।
बॉल कुदरती
नहीं नहीं
निज़ाम
नहीं
के
देखिए,
तहत
अब ये आप ले गए कुदरत को, मैं सिर्फ मैं कुदरत की बात कर रहा हूँ।
मैंने कहा थोड़ा
जाहिर है
मजा
जब वो
डाले
आगे
हैं
दो तीन मैचेस खेलेगा, आज लगता है कुछ ज्यादा मजा और है। काउंटर पे काउंटर, काउंटर पे काउंटर, खैर अच्छा है, सही है। नहीं, मैं यहाँ पे जलाल ये कह रहा हूँ ना कि देखिए उस्मान कादिर, हम लोग भी वही बात करते हैं पहले कि वो जो बॉल डालता है वो फुल टॉस निकल जाती है, तो अगर वो और खेलता है आगे तो हो सकता है बॉल उसकी ठीक हो जाए। और एज अ और वो अगर तो ऑस्ट्रेलिया में अगर हमें वहां पे उसकी जरूरत पड़ती है तो वहां पे वो खेल ले।
अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताओ ना, आर्गुमेंट अब ये है कि हम उस क्या उसे कहते हैं काउंटर पे निकले हैं तो एक और काउंटर हो जाए, क्या आपने पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम क्या आपकी प्रैक्टिस की जगह है जहाँ पे आप क्या प्रैक्टिस करोगे कि भाई मैं खेलता रहूँगा और मेरी एक ना एक दिन बॉल लैंड हो जाएगी? आप 4 डे क्रिकेट क्यों नहीं खेलता उस्मान कादिर, या आप उस्मान कादिर को ये जो नेशनल T20 कप हो रहा था इसमें आप खिला लेते उसको, या पहले जो टूर में ये पाकिस्तान के साथ रहा है आप इसको मैच प्रैक्टिस क्यों नहीं करवाते? आपने पाकिस्तान टीम क्या वो जगह आपको लगती है कि वहां पर तो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स आने चाहिए, ठीक है, फिर जाहिद महमूद का क्या कसूर है, फिर
नहीं,
उसका तो नेशनल T20 कप में अच्छी परफॉर्मेंस है, फिर आप आर्गुमेंट करोगे कि आप उस्मान कादिर की जगह जाहिद महमूद को रखते हैं, आप क्या कहते हो आप इस पे?
यार मैं उस्मान कादिर का रिकॉर्ड निकालना चाह रहा हूँ कि इसका डोमेस्टिक में कितने खेले हैं इसने। 78 खेले, 80 विकेट से, 73 इनिंग्स में 80 विकेट से।
उस्ताद
यार
आपके
मेरा
पास
आर्ग्यूमेंट
उसामा मीर भी है, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल लेवल, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये वो जगह नहीं है जहां पे आप प्रैक्टिस करो कि मैं एक ना एक दिन मैं मैच खेल खेल के मेरी बॉलें
यार,
लैंड हो जाएंगी, आपको ये काम डोमेस्टिक में करना होता
लेकिन
है।
जलाल आप देखिए मेरी बात भी जरा सुने। अभी अभी यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड कप आ रहा है, आगे आगे बड़ा इवेंट है और आपने इसको स्क्वाड में रखा हुआ है, ठीक है? तो आप मुझे बताएं, अपनी वैसे चलें, आप सेंस यूज करें, आप मुझे बताएं, वर्ल्ड कप आगे खड़ा है, सही है, और आपका एक बंदा है जिसका आपने आपने रखा हुआ है 15 बंदों में, वो अगर उसकी बॉल सही लैंड नहीं हो रही, और आपको पता है अगर बॉल सही लैंड हो जाए उसकी बॉल बहुत ज्यादा स्पिन होगी, तो आप उसको चांस देंगे या नहीं?
नहीं दूंगा चांस, क्योंकि मैं वर्ल्ड कप में ये चांस नहीं ले सकता कि
बस
उस
फिर
पहली
आर्गुमेंट
बात
खत्म
है
है यहाँ।
यार, देखो पहली बात, उस्मान कादिर प्लेइंग 11 में खेलेगा नहीं जब तक शदाब खेल रहा है, ये क्लियर एक बात है, ठीक है? तो आपने
हाँ
उसको
ये बात
रखना
तो
था ना,
सही
तो
है,
आप रिजर्व्स में
सही
रखते, पहली बात मेरी ये है, आप उसको मेन स्क्वाड में डाल ही नहीं
सही।
सकते थे कि अगर शदाब इंजर्ड होता है, टूर्नामेंट से बाहर होता है, तभी उस्मान कादिर ने आना है। मेरा आर्गुमेंट ये था कि इससे फार बेटर ऑप्शन आपके पास इमाद वसीम की शक्ल में मौजूद थी, ऑलराउंडर के तौर पर वो आपका पूरा बॉलर भी है, पूरा बैट्समैन भी है, वो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता था, वो आप नहीं गए, जिस मर्जी रीजन की वजह से नहीं गए वो एक अलग बात है। उस्मान कादिर की फिलहाल इस परफॉर्मेंस पे मेन स्क्वाड में जगह मुझे तो नहीं दिखाई देती, रिजर्व्स में ठीक है चलो आप कह लेते हो, लेकिन मेन 15 में तो मुझे नहीं उसकी जगह जस्टिफाई लगती।
यार खैर वही बात है, हर किसी का अपना आर्गुमेंट है, पर्सपेक्टिव अलग अलग है। मैं तो बोलूंगा कि उस्मान कादिर एज अ बैकअप है शादाब का, अगर शादाब इंजर्ड होता है तो वहां पे उस्मान कादिर बेहतर ऑप्शन है। खैर
अच्छा
आगे
अब
चलते हैं,
नहीं नहीं
अगले
नहीं
क्वेश्चन में
आर्गुमेंट फॉर
चलते हैं।
आर्गुमेंट, देखो
हाँ,
अभी
चलें।
आपने मुझे बोला कि खुशदिल की रिप्लेसमेंट वो नहीं हो सकती, आमिर जमाल नहीं हो सकती, ठीक है, कि वो बैटर है और वो ऑलराउंडर है। अब मुझे एक चीज
बिल्कुल,
बताओ, शादाब की रिप्लेसमेंट उस्मान कादिर कैसे हो
हाँ
सकती है? शादाब ऑलराउंडर है, उस्मान कादिर बॉलर है, ये फिर आप मोहम्मद वसीम वाली सिलेक्शन ही कर रहे हो, जहां जस्टिफाई कुछ करना हो वहां आप
हाँ
अपनी
ये
लॉजिक लगा देते हो।
नहीं, देखे ना, आपको आपको स्पिनर तो चाहिए ना, लेग स्पिनर, आप किसको लाएंगे?
यार मुझे एक चीज बताओ,
लेग
आपको
स्पिनर
लेग
है,
स्पिनर फॉर द सेक ऑफ लेग
हाँ
स्पिनर चाहिए जो 50 रन खाए 4 ओवरों में, या इमाद वसीम का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उसको पावर प्ले में भी करा सकते हो, वो आपको बैटिंग ऑप्शन भी देता है, 4 ओवर इमाद वसीम नहीं करा सकता मजबूरी में? उस्मान कादिर से तो बेहतर
चले
ही करा
आगे
सकता
चलते
है।
हैं, मेरे ख्याल में आगे चलते हैं इस आर्गुमेंट पे, अगले अगले पॉइंट पे आ जाए बाप।
नहीं, चलो ये तो टीम होगी ना, बॉलिंग का असल मुद्दा ये था, देखो हमारा भी
हाँ
सारा ये कहने का मतलब है, कंसेंसस ये है मेरा और तेरा, अगर है कोई तो वो
हाँ
ये है कि हमारी बैटिंग लाइनअप में, बैटिंग ऑर्डर में भी इनफ्लेक्सिबिलिटी वाला इशू है, बॉलिंग लाइनअप में भी इनफ्लेक्सिबिलिटी वाला इशू है, ठीक है? अब ये स्टेम कहां से करता है? ये स्टेम करता है बाबर की कप्तानी से, जो कि इस लिहाज से अगर जज की जाए तो बड़ी पथेटिक है, और फिर दूसरा आपकी टीम मैनेजमेंट और आपकी डाटा एनालिटिक्स वाली जो टीम बैठी हुई है वो फिर कर क्या रहे हैं। ये अच्छी एक चीज है कि बाबर ने और स्क्लैन ने एटलीस्ट लास्ट मैच के बाद एडमिट किया है कि हाँ हम फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ देख रहे
बोला
हैं, अब अल्लाह करे जल्दी देख
है
लें,
सही है
ऐसा ना वर्ल्ड कप के बाद देखें, क्या कहते हो आप?
बिल्कुल यार, अल्लाह करे वो जैसे बोल रहे कॉन्फ्रेंस में आके, तो ये भी वही बात है, अगर अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान हार जाता ना लास्ट मैच, तो फिर शायद इस तरह की बातें ना होती, फिर वही वाली बातें चल रही होती है सकलैन की, जिस तरह वो पहले करते हैं, फेथ वाली और कुदरत वाली, इसी तरह बाबर भी इसी तरह की बातें करता। तो चलो अच्छा है, इस तरह की चीज हो जाए।
नहीं
आप
नहीं
ये
बिल्कुल
बताएं कि इंग्लैंड की भी खबर आ रही है, जॉस बटलर आ रही, वो आ रहा है टीम में, जॉस बटलर, तो क्या सीन है उसका यार, वो किसकी जगह खेलेगा?
जॉस बटलर किसकी जगह खेलेगा यार? आई डोंट थिंक सो। अभी जो खबर आई है उनकी वो ये आई है कि जॉस बटलर जो है वो शायद नहीं खेलेगा, जो उनके कोच ने कहा है कि हम अगले में तो नहीं शायद खिला रहे, फिफ्थ मैच में, उसके बाद शायद वो खेल ले,
अच्छा
क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे वर्ल्ड कप वाला ना, तो
अच्छा
ये
ओके
शायद जो है
ओके
ना इश्यू
ओके
चल रहा है।
सही सही सही
अच्छा ये भी मुझे बताओ, ये आपने
खैर
अच्छा वैसे पॉइंट रेस किया
हाँ
कि हम लोग भी ये आर्गुमेंट मेक करते रहे हैं कि इंग्लैंड की सी टीम या बी टीम पाकिस्तान की ए टीम को हरा रही है, क्या हम ये ज्यादा नहीं
यार
कोई बायस्ड हो जाते
नहीं
कि क्या ये वाकई पाकिस्तान की ए
नहीं
टीम है जिसमें शदाब नहीं है,
नहीं पाक
जिसमें शाहीन नहीं है,
बिल्कुल
जिसमें नसीम नहीं है?
ऐसे ही है,
सही है,
ऐसे
मेन
ही
तो
है,
आपके बॉलर्स हैं ही नहीं इसके अंदर, तो फखर भी नहीं
सही
है।
बात है, ऐसे ही है। नहीं बिल्कुल सही बात है कि हम लोग यही बोलते रहते हैं कि टीम ए वर्सेस टीम बी टीम सी हो रहा है तो पाकिस्तान जीत के क्या तीर मार रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल में। बॉलिंग में हमारे पास जो मेन बॉलर्स हैं, शाहीन हमारे पास नहीं है, नसीम जिस तरह बात की आपने वो भी नहीं है, तो होने चाहिए मेरे ख्याल में, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं अभी कल क्या होता है। कल वैसे हमने लाइव आना है,
यार अच्छा कल आप मुझे बताओ, आप मुझे कह रहे थे कि कल कोई फैमिली फंक्शन वंक्शन चल रहा है आपका, तो अगर
यार हाँ कल
कल
नहीं,
फिर मसला
फंक्शन
लग
मेरा
रहा है
नहीं चल
आपको।
रहा, फंक्शन कोई और हाँ कल थोड़ा सा इशू लग रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग, इन्फॉर्म कर देंगे इस पे क्या कहते हैं फॉरम वगैरह पे के कम्युनिटी पे के, लेकिन मुश्किल लग रहा है।
चलो कोई नहीं यार, कल अगर नहीं हुआ तो परसों आ जाएंगे, लेकिन हम अपडेट कर देंगे ट्विटर पर
बिल्कुल
भी और यूट्यूब पर भी, तो जो लोग देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा लगता है, अगर अच्छा नहीं लगता तो वो भी कमेंट
हाँ
करके बता
बिल्कुल,
दें।
तो
बाकी
हमें
मेहर
आप
साहब,
जरूर बताएं।
हाँ वेबसाइट भी हमारी है
हाँ
www.talkbeforewicket.com, उस पर भी जाके देखें, सारे हमारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं वहाँ पर ऑडियो फॉर्मेट में, गूगल एप्पल स्पॉटिफाई हर जगह आप हैं, बस
हाँ
गूगल के ऊपर टॉक बिफोर विकेट लिख दें आपको कहीं ना कहीं हम मिल जाएंगे।
बिल्कुल
ठीक है उमेर
बिल्कुल,
साहब मैं
बाकी
कहता हूँ,
फीडबैक जरूरी दें, अपना फीडबैक आप हमें जरूरी दें,
हाँ
वो
बिल्कुल
काफी ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा ताकि हम अपना कंटेंट इम्प्रूव करें, और दैट्स इट, यही चीज है।
इजाजत लेते हैं, मैं
चलें
कहता
फिर
हूँ मेहर
फिलहाल
साहब
से,
मेरी भी एक मीटिंग है जो अटेंड करनी है,
हाँ
क्या ख्याल है
बिल्कुल,
आपका?
आज बिल्कुल आज वैसे हम सही टाइम पे फ्री हो गए।
टाइम पे फ्री हो गए बिल्कुल। चलो जी अपना ख्याल रखें सारे, आपसे फिर मुलाकात होती है जल्दी,
चलें
ठीक है जी,
ओके
ओके
जी,
खुदा हाफिज़।